इसके बाद अगली सूरत जो बहुत ही खूबसूरत है, सूरत अल अनाम शुरू होती है और इसमें 110 आयात हम इस बारे में इसकी पढ़ेंगे, यानी ये पूरी सूरत एक गो में नाजिल हुई थी। और रिवायत से पता चलता है कि हर आयत के साथ 70,000 फरिश्ते थे। टॉपिक क्या है इसका? सिफाते बारी ताला, तौहीद, रिसालत और ईमान बिल आखिरा। आप अभी तक मुस्तकिल मदनी सूरतें पढ़ रहे थे, सूरत बकरा से ऑनवर्ड माईदा तक। ये बड़ी बोझल सूरतें अहकामात से लबरेज थी। अब आपको फील होगा, यानी सूरत अल अनाम और इससे अगली भी सूरत अल आराफ, ये दोनों मक्की सूरतें हैं और मक्की सूरतें मदनी सूरतों की निस्बत बहुत लाइट और डेलिकेटेड सी हैं। इसको पढ़ने के दौरान बस दिल को से सामने रखिए, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं होती, इसमें अहकामात भी नहीं होते मोस्टली। हाँ, अकीदा बहुत है। तो सिफाते बारी ताला का जिक्र पहली 3 आयात में है। यहाँ एक और बड़ा खूबसूरत नुक्ता आप ज़रूर नोट कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुई थी ना, यहाँ तकरीबन 7.5 पारे हो गए, दोबारा अल्हम्दो से सूरत शुरू हो रही है। आगे चलिए, 15वां पारा, कौन सी सूरत? सूरह कहफ हर जुमे को पढ़ते हैं, कैसे शुरू होती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। कुरान का ये एजाज है हर 17.5 पारों के बाद, यानी पूरा, फिर निसफ, फिर निसफ का निसफ, फिर उधर के निसफ का निसफ और एंड तक अलहम से शुरू होती हैं सूरतें। यानी 4 सूरतें कुरान में ऐसी है जो अलहमदों से शुरू होती हैं। इसी से आपको मिजाज समझ आ जाएगा कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफें हैं और ख़ास तौर पे इसमें आप देख रहे हैं अल्लाह के नूर और अंधेरों को पैदा करने की बात है। नूर और अंधेरे क्या हैं? तौहीद और कुफर। आप देखिए कि सच एक होता है, झूठ को जितने मर्जी बोल लें। तो इन आयात को पढ़ते वक्त हम सबको इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि ज़िंदगी में हमेशा रोशनियों की तलाश में रहें, तौहीद का नूर। हमारी रूह नूरानी हो, उसका दिल ठंडा, हमारा दिल खुश हो। जिस्म तो एक बुत है जिसको हम पूजते हैं, यानी मादी चीज़ों से ज़्यादा रूहानी चीज़ों पे चलिए। जिस्म के तकाज़ों से ज़्यादा रूह के तकाज़ों पे नज़र रखनी है। फिर आयत नंबर 4 से 6 में मुशरिकीने मक्का को अजाब की वईद है कि ये तुम इस तरह की जो बातें कर रहे हो कि हम पे ये निशानी आ जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, तो ये असल में इस बात की खबर है कि तुम्हारे दिल में तलब नहीं है हिदायत की। अल्लाह ताला ने लोगों को अपना प्यारा नबी दिया, नबी चल के नबी मदीना वालों के पास तो बाद में आए। आप देखिए कि मक्का की ज़मीन तरस रही थी कि कोई हादी आए, कोई राहबर हो, कोई मुज़क्की हो, मुरब्बी हो, कोई उस्ताद हो। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, लेकिन लोगों के नखरे देखिए, मुतालबे देखिए, उनकी मजबूरियाँ देखिए, तो अल्लाह ताला ने इधर ये बात करके बता दिया कि पिछली कौमों ने भी यही कुछ किया था। जब तक तो कोई नेमत नहीं होती ना, हम हसरत करते हैं, हाय ये हो तो हम ये करें, ऐसा हो जाए तो ये करें। अच्छा, वो नेमत आ जाती है, वो नेमत आपको मिल जाती है तो हम फिर उसकी कदर नहीं करते। तो कह लीजिए कि मक्का वालों ने नबी सल्लम की कदर ना की जो करने का हक था। फिर आयत 7 to 11 पे आप अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दिलजोई की। देखिए, जिसके दिल में तड़प होती है ना कि दूसरों को फ़ायदा दे, तो वो तो तड़पता है। अल्लाह के नबी लोगों को दिन को भी पुकारते थे, रात को भी पुकारते थे। आपने अपने आप को फुली डिवोट किया हुआ था, फुल टाइम मुबल्लिग थे, उस्ताद थे और बहुत कुछ थे, लेकिन जब लोग आपसे फ़ायदा नहीं उठाते थे तो अल्लाह के नबी का दिल दुखता था। अब ये थोड़ी था कि अल्लाह के नबी को उसे कुछ माल मिलना है। आज भी आप देखिए, एक सच्चा दाई, लोगों को दीन से जोड़ने वाला, अपने दिल में दर्द महसूस करता है कि इतना खूबसूरत कलाम है और लोग इसको लेना नहीं चाहते। और ख़ास तौर पे फिर इन आयात में आप पढ़िए कि मुझसे मांगते थे, चाहते ये बस दुआएं कर दी जाएं, बस दुआ कर दें हमारे लिए हो जाए, अच्छा वो कर। आज हमारा भी कोई कुरान के साथ कुछ ऐसा ही मामला है, पढ़ने पढ़ाने का हमें शौक नहीं। हम 3 घंटे की फिल्म देख सकते हैं, 2.5 घंटे का दौरे कुरान हमें बहुत लंबा लगता है, 1.5 घंटा भी हमें बहुत ही लंबा लगता होगा या पता नहीं क्या है। और दिल चाहता है कि वक्त 1 घंटे का हो और उसमें सब खजाने भी डाल दिए जाएं। तो ये सारी बातें आपको मुझे क्या सिखाती हैं? अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिल में दीन की मोहब्बत डाल दे। जिस चीज़ में दिल लग जाता है उसमें वक्त का एहसास नहीं होता। फिर आए 12 से 14 में, अल्लाह ताला गनी और माबूदाने बातिल मुख्ताज हैं, क्योंकि मक्का में तो घर घर शिर्क था, बुत पूजे जाते थे, तो अल्लाह ताला ने इधर तौहीद और शिर्क का जो फ़र्क बता दिया गया। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, कतबाला नफ्स हिर रहमा, अल्लाह ने अपने नफ्स पे रहमत रख ली। याद रखिए कि अल्लाह ताला अपनी असल के एतबार से रहमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में दो नाम रहम से मुतल्लिक हैं। सूरत फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम में दोनों रहम के सीगे हैं। आप देखिए कि हम सेहतमंद तो हमेशा ही होते हैं ना, बीमार कभी कभी होते हैं। आफियत हमेशा होती है, कभी ना कभी चोरी हो जाती है, ये अल्लाह की रहमत है। खुश हम हमेशा होते हैं, कभी कभी सैड भी हो जाते हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह ने तो अपनी रहमत दी, और अल्लाह की रहमतों में सबसे बड़ी रहमत क्या है? अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह ने अपने नामों में से एक नाम पे सूरत रखी है कुरान में, और वो अर्रहमान है। अल कहार नाम की कोई सूरत नहीं है, अल जब्बार नाम की कोई सीरत नहीं है, सूरत नहीं है, क्योंकि इन नामों के साथ हमें कुछ नेगेटिव दिखता है, हालांकि अल्लाह के ये नाम भी नेगेटिव नहीं है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो आयत 15-16 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजजी का जिक्र है। कैसे? आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा हसास थे। कुल इन्नी अखाफ इन असईतु रब्बी अज़ाब यौम अज़ीम, कहा मैं तो गुनाह करते हुए अल्लाह की पकड़ से डरता हूँ। अगर आपको याद रहे ना तो इस आयत को याद कर लीजिए, अगर अरबी नहीं याद कर पाते ना उर्दू कर लें। कभी भी कोई शख्स आपको गुनाह की दावत दे या मजबूर करे या अपनी नाराज़गी से आपको डराए, तो ये जुमला बोला करे, इन्नी अखाफ़ू, मैं डरती हूँ। किस बात से? इन सही तो रबी, अगर मैं नाफरमानी करूँ अपने रब की, किस बात से? अज़ाब यौम अज़ीम, यानी मुझे अज़ाब अज़ीम से का डर है अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ। और मैं युसरफन हुई यौम इज़न, जिससे वो अज़ाब रोक लिया गया उस दिन, फ़कद रहिमा हो, अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया। तो कभी लोगों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। फिर आगे बड़ा खूबसूरत मौजू है आयत 17-18 में, नफ़ा और ज़रर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर सिर्फ ये बात आज हम अपने इस मुल्क के अनपढ़ लोगों से लेके पढ़े लिखे लोगों को बता दें, तो अनपढ़ लोग गदागरी ना करें, स्ट्रीट बैगर्स ना बने, आपके कपड़े फाड़ने की कोशिश ना करें, और बड़े लोग जो हैं वो गैरों की मदद की उम्मीद ना रखें। जब आपका यकीन है, ये मुस्लिम बिलीफ है, और वो क्या है? वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ देना चाहे तो कोई इसको हटाने वाला नहीं। हाँ, कौन हटाएगा? इल्ला हुआ, अल्लाह ही उठाते। वो कहते ना कि माँ मारे बच्चा मामा पुकारे, माँ ही फिर बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे को चैन आता है। वहीं यमसस का भी खैरिन, और अगर तुझे कोई खैर वो देना चाहे, फहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो इस चीज़ पे कादिर है। माँ बाप हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि बच्चे को चोट ना लगे, बच्चे को बेहतरीन चीज़ मिले, लेकिन बच्चे गिरते हैं, बच्चों को चोटें लगती हैं। माँ बाप चाहते हैं बच्चा फर्स्ट आए, बच्चा कभी हो सकता है फेल भी हो। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और इस पर अल्लाह के नबी ने एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाई है, अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें। देखिए, ज़िंदगी में औलाद की तरफ से गम आते हैं, शोहरों की तरफ से आते हैं, बीवियों, भाई बहनों सबके आते हैं, कभी माली परेशानियाँ कुछ ना कुछ आती हैं। तो इस आयत को याद रख लें जो इस दुआ के साथ जुड़ी हुई है, कि अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा आतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, और मिश्कात में भी 876 है, कि अल्लाह जो चीज़ तू अता कर दे इसे कोई रोकने वाला नहीं। सच्ची बात है, वो जो देना चाहता है ना, सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, सारी दुनिया आपसे हसद करे, वो चीज़ आपको फिर भी मिल जाती है। और जिस चीज़ को तू रोक ले इसे कोई अता करने वाला नहीं। हरम में जाकर गिलाफे काबा को थाम के भी दुआ करो तो फिर भी नहीं मिलती चीज़। माँ बाप बच्चों के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, माँ बाप हमारे कल्चर में बेटियों को सोने में तोल देते हैं, नसीब में नहीं है तो नहीं मिलता। वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द, और दौलतमंद की दौलत तेरे हाँ कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। गाड़ी खड़ी है, चली नहीं रही, आपको चाबी नहीं मिल रही, यानी चीज़ आपके हाथ में होती है फ़ायदा नहीं होता, चाबी परस में आपको मिली नहीं रही, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो इस दुआ को याद कीजिएगा, और जहाँ भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए इसको पढ़िए, अल्लाह ताला दिल को ठंडा करेगा। आगे आयत नंबर 19-20 में नबी सल्लम की सदाकत की गवाही है, कि आप सच्चे नबी थे, और किस तरीके से, किस लगन से लोगों को सच की तरफ बुलाते थे। और इसमें जो बात आपके मेरे लिए अमल का नुक्ता है वो क्या है, कि ये कुरान जो नबी सल्लम पे नाजिल किया गया वो क्यों था? ली उन जीरा कुम भी ही, ताकि मैं तुम्हें इसके ज़रिए से इंतज़ार करूँ, वॉन करूँ, तुम्हें अच्छे बुरे से डराऊं और बताऊं, वह मम बलग और जिसको पहुंचे। तो आपको मुझे भी अपने बच्चों से लेकर और भी जो भी आपके बड़े छोटे करीब हैं, कुरान के जरिए नसीहत करनी चाहिए। जो अक्सर हम अपने इर्द गिर्द वालों को डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, कभी उसकी बात कभी उसकी बात, बहुत बेहतर है चंद आयतें नपी तुली जुबान से अपने बच्चों, शौहर, बीवी, जिसको भी आप सुझाना समझाना चाहते रख दें। पर ये हम कब रखेंगे? जब हमें खुद समझ आएंगी। तो जितना आप कुरान से करीब होते जाते हैं, आपके मामले सीधे होते जाते हैं अल्लाह की रहमत से। फिर उसके बाद आयत 21 से 24 में शिर्क करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। जैसा कि मक्की सूरतों का मिजाज ही है कि इसमें तौहीद और शिर्क पे बहुत बात होती है, तो इस आयत में भी 21 से 24 में बड़े खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने शिर्क करने वालों की वो बातें जो दुनिया में करते थे उसका तذکرہ करके उनको जालिम करार दिया, क्योंकि अल्लाह का हक बंदों को दिया जा रहा होता है, अल्लाह ताला उससे बचाए। फिर आए 25 से 28 में दूसरों को गुमराह करने वालों का क्या अंजाम होगा। आज आप इंसानों की इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की गुमराही का जरिया बनते हैं, जैसे न्यूडिटी फैलाते हैं, गलत फिल्में हैं, बच्चों को बिगाड़ते हैं और कुछ और है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया कि कल ऐसे लोग जो दुनिया में खुद भी भटके और दूसरों को भी भटकाना चाहते थे, तो जब उनको आग पे खड़ा किया जाएगा तो क्या कहेंगे? या लईतना, काश, आई विश, क्या नोरद्दू, हम वापस पलटाए जाए किधर? दुनिया में। वला नुकज्जिबु बियायाति रब्बिना, फिर हम अपने रब की आयतों को नहीं झुटलाएंगे। वन नकूना मिनल मोमिनीन, और मोमिन होंगे। अब सवाल ये है कि अब क्या फ़ायदा? देखिए, जिस दिन रिजल्ट निकले और बच्चा फेल हो जाए, सोचिए, जिस दिन रिजल्ट निकले और बच्चा फेल हो, तो वो अपने एग्जामिनर को के मुझे एक दफ़ा क्लासरूम में भेज दें, अब मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, तो फिर उससे फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसके बाद आए 29 से 31 में आखरत की तैयारी से गफलत का अंजाम है। कैसे? वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में दिल लगा लिया। आप देखिए कि आप अपने बच्चे को 100 रुपया देकर कहते हैं, जाओ बेटा दही ले आओ, आप इंतज़ार कर रही हैं कि वो दही लेके आएगा और आप खाना बनाएंगी, और क्या पता चला कि वो 100 रुपये लेकर किसी गेम सेंटर में पहुँच कर खेल खिला कर खाली हाथ वापस आ गए। आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। इस मिसाल को इस आयत की रोशनी में देखिए। वकालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, वो कहते हैं कि ये तो जो हमारी दुनिया की जिंदगी है ना, ये बस एक खेल है, वी आर प्लेइंग हेयर, और दिस एंड दैट, और हम दोबारा उठाए ना जाएंगे। अल्लाह ने कहा, अच्छा, वाला उतरा इस वो की वाला रबी हम, विजुलाइज कराया जा रहा है। सोचो, जब अपने रब के सामने खड़े हो गए तो फिर वहां तुमसे जो सवाल जवाब होंगे उस वक्त झुटला सकोगे? हसरतों से भरी हुई आयत है। क्या पता चला कि दुनिया की जिंदगी महज धोखा है? आयत 32 से पता चलता है, वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुम वलहवन वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लजीना यत्तकून, सिर्फ आखिरत का घर उनके लिए अच्छा होगा जो दुनिया में बचते बचाते जिंदगी गुजारेंगे। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं? अच्छा, अब यहाँ से नोट करना शुरू कर दें, पूरे कुरान में आगे भी आप देखेंगी, जिस आयत में आपको दुनिया और आखिरत का तकाबुल मिलेगा ना, कंपैरिजन मिलेगा हेयर आफ्टर एंड देयर दिस वर्ल्ड, वहाँ एंड पे अक्ल की बात होगी। यानी ये तो अक्ल में बात आती है, इसके लिए तो किसी मजहब की जरूरत नहीं। फिर आप देखिए कि इसमें दुनिया की जिंदगी को जो धोखा दिया, धोखा कहा गया, इसमें दो लफ्ज आए हैं, लाइव और लाहव। फर्क क्या है? लाइव कहते हैं खेल को, उर्दू में हम बोलते हैं ना खेल तमाशा, तो लाइव खिलाड़ी को कहते हैं, मल अब प्ले ग्राउंड को कहते हैं। तो यहाँ लाइव से मुराद हर वो काम जो फायदेमंद नहीं होता। लव क्या होता है? हर वो काम जिससे इंसान गफलत में पड़ जाए। क्या ये कलामे दिल फरेब नहीं है? क्या आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीजें नहीं है जो अल्लाह की याद से गफिल कर दें तो जिंदगी को जाया नहीं करना इंशाल्लाह। फिर आए 33 से 34 में नबी सल्लम को सब्र की तलकीन की गई कि लोग आपको तकलीफ देते हैं। कद नालमु इन्नहु ला यहज़ुनुकल्लज़ी यकूलून, यानी बातें करते थे, आज भी लोग दीनदारों को बातें करते हैं, दीन के नाम पे बातें करते हैं और बात नहीं थे मानते। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में तसल्ली दी कि आपसे पहले रसूल भी जो थे झुटलाए गए हैं, आप इन पे सब्र करें। यहाँ जो अमल की बात बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है, अल्लाह के नबी को क्या कहा गया? ला यहज़ुनुका, हुज़न से, गम, ये नहीं कहा कि लयग़ज़बु का, कि आपको गुस्सा आता है, गजबनाक होते हैं। हम लोगों की बातों पे गुस्से में आ जाते हैं। अल्लाह के नबी जलते थे, कुड़ते थे, तो अल्लाह ताला हमें जलने वाला बनाए, गुस्से में ना लाए हमें। फिर आए 35 से 36 में फरमाइशी मोजज़ों की बातें हैं, और अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों को मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अल्लाह की एक सुन्नत है हज़रत आदम से लेके आखिर तक, कि जिस कौम ने मोजज़ों का इनकार किया या मोजज़ा मिल गया और उसकी नाकदरी की, उनकी पकड़ हुई। इंशाल्लाह सूरत अल अराफ से अम्बिया कराम के किस्से शुरू होंगे, तो आप वहाँ ये बात देखेंगे, तो क्या पता चला कि जिनको मोजज़े चाहिए, कुदरत के मोजज़ात तो चारों तरफ मौजूद हैं। आयत 37-39 में अल्लाह ताला ने कायनात में फैली हुई चीज़ों की बात कर दी, कि तुम कौन सी निशानी मांगते हो, क्या तुम्हारा अपना वजूद भी अल्लाह ताला की एक करामत नहीं है? आप इस कायनात के निज़ाम को देखो, सूरज चांद सितारों को देखो, क्या ये अल्लाह ताला की कुदरत के मोजज़े नहीं है? फिर इसके बाद आयत 40 से 41 में मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारने का हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसी मुश्किलों में अपने बुतों को पुकारते थे। छोटी छोटी चीज़ें अल्लाह से मांगते हैं हम, बड़ी चीज़ें जाकर बुजुर्गों से मांगते हैं। मक्का वालों का उलट था मामला, वो क्या करते थे, छोटी छोटी चीज़ें अपने बुतों से मांगते थे, जब किसी बड़ी मुश्किल में पड़ते थे तो अल्लाह के पास आते थे। आप ज़रा गौर कीजिए, तो हमारा मामला तो उससे भी संगीन है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारो, क्योंकि अगर कोई अजाब आएगा, कोई पकड़ आएगी, तो उसे अल्लाह ही निकालेगा। अब देखिए, जब जलजला आता है तो किसके हुक्म से रुकता है? वो और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, सारी पूरी बस्ती को तबाह कर दे। तो इधर यही बात कर दी कि कुल अराअयतुकुम, क्या तुमने देखा, मुरादे के गौर करो, अगर तुम पे अल्लाह का अजाब आ जाए, क्या तुम उस वक़्त दूसरे को पुकारोगे? तो सब जानते हैं कि मुश्किलों में फितरत पे पड़े हुए पर्दे छटने लगते हैं। फिर सवाल आता है कि अल्लाह क्यों मुश्किलात डालता है? तो उसका जवाब आयत 42 से 45 में है, कि अल्लाह आफात झंझोड़ने के लिए भेजता है। जब कोई सो रहा होता है तो आप उसको उठाते हैं ना, खास तौर पर सहरी के वक्त घरों में क्या हो रहा होता है, फिर आप उसको जाके खूब हिलाते हैं, उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है, वक्त कम हो रहा है। जब कौम सो जाती है ना, तो अल्लाह ताला झंझोड़ने के लिए आफात भेजता है। जिस दिन जलजले के झटके महसूस हुए, उस दिन मस्जिदों में हाजिरी भर गई। तो यही बात इधर अल्लाह ताला ने करके हमें भी बता दी, कि अल्लाह ने पिछली कौमों में भी जब तकलीफ़ें दी तो उस वक़्त वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जूँ ही वो तकलीफ़ ख़त्म होती है, लोग फिर बदल जाते हैं। फिर इसी आयत में, आयत 44 में, अल्लाह ताला का कानून इमहाल है, इसको कहते हैं अल्लाह का मोहलत देने का कानून, इसको समझिएगा। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शय। हम आमतौर पे किसी बंदे से जब नाराज़ होते हैं ना, तो उसको जो चीज़ दी हो वो भी वापस ले लेते हैं। अल्लाह की सुन्नत अपोजिट है। जब कोई अल्लाह से दूर हो रहा है, अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़्यादा कर रहा है ना, तो अल्लाह ताला उसको और नेमते देते हैं, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। और जब उन चीज़ों में खो जाता है ना, तो अल्लाह ताला एकदम उसकी रस्सी दराज करते हैं। दुनिया में लोगों को अगर आप नेमतों में देखें, माल भी है, औलाद भी है, घर भी है, लेकिन वो नाफरमान है, तो इसको याद कीजिए। और असल में अल्लाह चाहते क्या है, कि इनकी चार्जशीट लंबी हो जाए, इनके गुनाहों की दास्तान लंबी हो। तो ज़रूरत है इस बात की कि इंसान इसको समझे। इस पर एक मिसाल बहुत समझ आ जाती है। किसी के घर में नई मासी आती है, तो वो कहती है मैं ज़रा चेक कर लूँ कि ये ईमानदार है भी कि नहीं। हो सकता है आप 100 रुपये का नोट कहीं डाल दें और वो उठा लें। आपके सब दो चॉइसेस हैं, आप फ़ौरन उसका कान पकड़ें, उसको घर से बाहर निकाल दें। हो सकता है वो कह दे नहीं बाजी, ये तो मैं आपको देने ही लगी थी, लेकिन आपने उसको फारिग कर दिया। दूसरी सूरत है कि आप अगले दिन 500 का एक नोट डालती हैं, वो भी ले जाती है, तीसरे दिन 1000 का। अब वो क्या सोच रही है, बाजी कितनी भोली है, चलो अच्छा तनख्वाह तो जो मिली सो मिली, हर महीने ऊपर से भी ले जाया करूँगी। लेकिन आप आखिरी दिन जब 5000 का नोट वो पकड़ती है, और आप पूरी तैयारी कर चुकी होती हैं, तो फिर आप उसको पकड़ कर कान से कहती हैं कि ये भी दो, और कल वाला भी, और परसों वाला भी दो, और पुलिस को बुला कर उसको वापस भेज दें। मुझे बताइए, कौन सा मामला उस मेड के नाते से बेहतर हुआ? पहले ही दिन अगर आप पकड़ लेते ना, तो बच जाती। उसे कहना था नहीं जी, मैंने तो आपको वापस करना था, और आपके कोई और जवाब नहीं था उसको कहने का। बस इसको समझे कि अल्लाह जब बहुत सारे गुनाहों की मोहलत दे रहा होता है ना, तो ये इंसान को पकड़ने की तैयारियां हो रही होती हैं। और यहाँ अगर आपने नोट किया कि नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आयत 45 के एंड पे बिल्कुल पूरी वो आयत जो कि सूरह फातिहा में है, ये भी अल्लाह ताला का एक खूबसूरत मिजाज आप देख रहे हैं कि शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह था और ये यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन आ गया।